mandatory opening narration. mandatory opening narration. एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में. ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है.
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है. आज हम सफर करेंगे शब्दों के एक अनोखे रेगिस्तान में, एक ऐसी कृति के साथ जो अपनी भाषा, अपनी संवेदना और अपनी कहानी से पाठक को जैसे मंत्रमुग्ध कर देती है. हम बात कर रहे हैं ज़्यामारी गुस्ताव लकलेज़ियो के अहम उपन्यास डेजर्ट की.
लकलेज़ियो, हाँ, 2008 के साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता, और नोबेल समिति ने भी क्या खूब कहा था उनके बारे में. नई शुरुआत, काव्यात्मक रोमांच और इंद्रिय आनंद के लेखक.
मौजूदा सभ्यता से परे और उसके नीचे की मानवता के अन्वेषक. बिल्कुल, उनके लेखन में ये खोज साफ झलकती है.
हाँ, और उनकी जिंदगी भी तो देखिए. लकलेज़ियो, जिनका जन्म 1940 में हुआ, उनका जीवन खुद यात्राओं और संस्कृतियों के संगम का एक अद्भुत उदाहरण है. नीस में जन्म, मॉरिशस से जुड़ी जड़ें,
दुनिया भर के अनुभव, ये सब उनके लेखन में घुल मिल गए हैं. खासकर वो जिस तरह हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, पश्चिमी दुनिया के भौतिकवाद पर सवाल, प्रकृति.
बिल्कुल, प्रकृति, खासकर रेगिस्तान और समुद्र के प्रति उनका वो गहरा लगाव, वो उनकी पहचान है. और उनकी शैली भी, वो कहानी सुनाने से ज्यादा महसूस कराने में यकीन रखती हैं. उनकी भाषा वो इंद्रियों को जगा देती है.
और डेजर्ट जो 1980 में आया, वो उनके लेखन में एक मील का पत्थर माना जाता है.
बिल्कुल, फ्रांस में आते ही इसे हाथों हाथ लिया गया था. ग्रैंड प्री पॉल मोरांड जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला, जो फ्रांसीसी भाषा में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है
और अकादमी फ्रांसिस द्वारा सम्मानित है.
हाँ, और ये उपन्यास उस परंपरा का हिस्सा है जिसे हम उपनिवेशवादोत्तर साहित्य कहते हैं, यानी ऐसा साहित्य जो उपनिवेशवाद के बाद उसके असर, उसकी विरासत
और उससे जूझते समाजों की कहानियां कहता है.
हाँ,
सही कहा. लेकिन डेजर्ट सिर्फ उपनिवेशवाद की आलोचना भर नहीं है, मतलब ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है. ये पहचान की तलाश है, खोई हुई स्मृतियों को सहेजने की कोशिश, आत्मा की आजादी,
मिथकों की ताकत पर एक गहरा चिंतन भी है. और कमाल की बात यह कि इसके विषय जैसे पर्यावरण चेतना, प्रवासियों का दर्द, सच्ची आध्यात्मिकता की खोज, वो आज 40 साल बाद भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी लगते हैं.
हाँ, वो तो है. तो आज हम इसी उपन्यास की गहराई में उतरेंगे. इसकी वो दोहरी कहानी की बनावट, इसके मुख्य किरदार नूर और लल्ला,
हाँ, उनकी यात्राएं और इसमें छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे.
हाँ, बिल्कुल. चलिए इस दोहरी कहानी की संरचना से ही शुरू करते हैं. ये उपन्यास की सबसे अनोखी बात है ना?
हाँ, ये बिल्कुल अनोखी है. जैसे दो अलग अलग नदियां हैं जो 70 साल के फासले पर बह रही हैं, पर कहीं गहरे में जाकर मिल जाती हैं. एक तरफ है नूर की कहानी, इतिहास के पन्नों से जैसे मिटा दी गई एक त्रासदी, एक महागाथा. और दूसरी तरफ है लल्ला की कहानी, आज के दौर में अपनी जड़ों से उखड़ी एक लड़की की वापसी की कहानी.
और इन दोनों कहानियों को जोड़ने वाला सूत्र है सहारा का रेगिस्तान. ये सिर्फ एक लोकेशन, एक पृष्ठभूमि नहीं है.
बिल्कुल नहीं.
रेगिस्तान तो खुद एक किरदार है इस उपन्यास में. विशाल, खामोश, कठोर, पर साथ ही पवित्र भी. वो जीवन भी देता है, इम्तिहान भी लेता है, और आत्मा के लिए एक पनाहगाह भी बनता है. लकलेज़ियो दिखाते हैं कि कैसे ये धरती, ये रेगिस्तान इंसान की रूह को गढ़ता है, उसे जिंदगी के असल मायने सिखाता है.
तो उपन्यास का मूल सवाल यही है कि आज के इस भागदौड़ भरी भौतिकवादी दुनिया में, जहां सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, कोई अपनी जड़ों से, अपनी असल पहचान से, अपनी रूह की आवाज से कैसे जुड़ा रह सकता है.
हाँ, और यही सवाल दोनों कहानियों के केंद्र में है. पहली कहानी हमें ले जाती है 1909-1910 के पश्चिमी सहारा में. हम नूर नाम के एक छोटे लड़के के साथ हैं. वो नीले आदमियों यानी तुआरेग योद्धाओं के कबीले का हिस्सा है.
अच्छा, जिनके नेता हैं करिश्माई शेख मा अल एनिन. वे फ्रांसीसी फौजों से, जिन्हें वो नजरानी यानी ईसाई सिपाही कहते हैं, उनसे बचकर भाग रहे हैं.
और हम ये सब नूर की आंखों से देखते हैं, उस पूरी त्रासदी को एक बच्चे की नजर से, जो शायद समझ भी नहीं पा रहा कि उसकी दुनिया क्यों जड़ रही है.
हाँ, उसकी नजर मासूम है, पर जो वो देख रहा है वो भयानक है. रेगिस्तान का सफर, उफ, भयानक था. सूरज जैसे आग बरसाता देवता, प्यास और भूख हर पल का साथी. लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी समुदाय का साथ है, एक अटूट विश्वास है. लोग नमाज पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं,
और अपने शेख के पीछे चलते जाते हैं।
हाँ, इस यकीन के साथ कि वो उन्हें किसी पाक महफूज जमीन तक ले जाएंगे।
लेकिन नियति कुछ और ही तय कर चुकी थी उनके लिए।
हाँ, रास्ते में इम्तिहान और भी कठिन होते जाते हैं। गर्मी और भूख से लोग टूटते जाते हैं। एक बार चमत्कार की तरह बारिश होती है, उम्मीद बनती है, लगता है जैसे ऊपर वाले ने सुन ली, पर यह बस कुछ पल का सुकून होता है। आखिर में बेहतर हथियार वाली फ्रांसीसी फौज उन्हें घेर लेती है, पुरानी बंदूकों और तलवारों से मशीन गनों का मुकाबला। कैसे हो? नूर अपनी आंखों से योद्धाओं को मरते, औरतों को बंदी बनते, अपने कबीले को बिखरते देखता है।
और कहानी का कोई साफ अंत भी नहीं होता, मतलब वो बस
नहीं, जैसे रेगिस्तान की रेत में सब कुछ खो जाता है, वैसे ही कहानी भी विलीन हो जाती है। जो बच जाते हैं नूर की तरह, वो रेगिस्तान में खो जाते हैं जैसे भूत बन गए हों। इतिहास उन्हें भुला देता है। नूर अब सिर्फ एक लड़का नहीं, वो अपने लोगों की जिंदा याद बन जाता है।
नूर का किरदार कितना मार्मिक है। वो कोई नायक नहीं बल्कि एक गवाह है, सब कुछ सहता हुआ बच्चा, पर उस भयानक माहौल में भी वो खूबसूरती के पल देख लेता है। उसकी रूह हार नहीं मानती, वो उस खोई हुई दुनिया का प्रतीक बन जाता है।
बिल्कुल। और शेख मा अल एनैन, जो असल में इतिहास का हिस्सा हैं, वो भी हार ना मानने वाले जज्बे और विश्वास की मिसाल हैं। वो संस्कृति के गौरव और त्रासदी दोनों का चेहरा है जिसे मिटाया जा रहा था।
तो नूर की कहानी सीधे सीधे औपनिवेशवाद की क्रूरता पर एक तीखा सवाल है। ये आज़ादी छिन जाने का दर्द है, और ये याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति की स्मृति पूरे समुदाय की कहानी को जिंदा रख सकती है। रेगिस्तान यहाँ परीक्षा भी लेता है और आध्यात्मिक ताकत भी देता है।
हाँ,
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसकी गूंज दशकों बाद एक बिल्कुल अलग रूप में सुनाई देती है ना?
बिल्कुल। और यही गूंज हमें मिलती है लल्ला की कहानी में, जो लगभग 1970 के दशक में जी रही है। वो उन्हीं भूले बिसरे योद्धाओं की मानो आध्यात्मिक वारिस है। वो मोरक्को के एक शहर के किनारे बनी एक कच्ची धूल भरी बस्ती में रहती है।
लल्ला का किरदार नूर से कितना अलग पर फिर भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगता है।
हाँ, लल्ला गरीब है पर उसकी रूह अमीर है। उसका रिश्ता प्रकृति से है, रोशनी, हवा, समुंदर, सितारों से। वो पढ़ी लिखी नहीं है पर उसमें गहरा ज्ञान है, आजाद ख्याल, जिद्दी और अपनी आजादी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली।
उसकी शुरुआती जिंदगी कैसी है? उस बस्ती में उसका जीवन कैसा है?
गरीबी है पर खुले आसमान और समंदर का साथ भी है। उसका सबसे करीबी साथी है हरतानी, एक गुंगा चरवाहा जो खामोशी से उसकी हिफाजत करता है, जैसे उसका रक्षक हो, उसकी आत्मा का साथी।
अच्छा।
और बस्ती में अम्मा है, दादी जैसी, जो उसे पुरानी कहानियां सुनाकर उसकी जड़ों से जोड़े रखती है।
लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है जहां उसे ये सब छोड़ना पड़ता है।
हाँ, जब उसका चाचा उसकी शादी तय कर देता है। अपनी आजादी छिन जाने का डर उसे भागने पर मजबूर कर देता है। वो फ्रांस जाने वाले एक जहाज में छिप जाती है।
और फिर फ्रांस में मार्से शहर में उसका अनुभव घर से बिल्कुल उलट रहा होगा।
एकदम। वो जैसे एक दूसरी दुनिया में आ गिरती है। शोर, भीड़, बदबू, लोगों की बेरुखी, घर की वो रोशनी यहाँ नहीं। यहाँ एक अजीब सी उदासी है। वह एक होटल में नौकरानी का काम करती है। अकेलेपन और शोषण का अनुभव करती है, जैसा अक्सर परदेस गए लोगों के साथ होता है।
लेकिन फिर उसकी किस्मत पलटती है, पर शायद अच्छे के लिए नहीं। उसे शोहरत मिलती है।
हाँ, एक फैशन फोटोग्राफर रिडीज की नज़र उसकी अनोखी जंगली खूबसूरती पे पड़ती है, और रातों रात लल्ला गुमनामी से निकलकर फैशन की दुनिया की सनसनी बन जाती है, जिप्सी नाम से। उसका चेहरा मैगजीन पोस्टरों पर छा जाता है।
लेकिन एक कामयाबी उसे अंदर से खोखला कर देती है।
बिल्कुल। ये शोहरत उसके लिए एक मौत जैसी है। उसकी रूह, उसकी आत्मा कहीं खो जाती है। उसकी पहचान बस एक खूबसूरत मुखौटा बनकर रह जाती है। हाँ, एक खाली मुखौटा। वो लोगों से घिरी है पर पहले से ज्यादा अकेली है। शहर की सड़कों पर वो एक भूत की तरह भटकती है। उसे बार बार अपने रेगिस्तान, उस सूरज, उस हवा की याद आती है।
और फिर एक और अहम मोड़ आता है। उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है।
हाँ, और ये एहसास उसके अंदर जैसे एक कुतुब नुमा, एक कंपस बन जाता है, उसे दिशा दिखाता है। वो समझ जाती है कि वो इस बच्चे को शहर की इस बेजान रूहानी तौर पर खाली दुनिया में जन्म नहीं दे सकती। और इशारे हैं कि बच्चे का पिता हरतानी है, रेगिस्तान का वही खामोश साथी
जो उसके साथ भागकर नहीं आया था।
नहीं, वो वहीं था। ये रिश्ता शायद पहले का है।
और अंत में वो एक बड़ा फैसला लेती है, सब कुछ छोड़ देती है।
अपनी रूह को बचाने के लिए वो सब कुछ छोड़ देती है, शोहरत, पैसा, करियर। अपनी जमा पूंजी से घर वापसी का टिकट खरीदती है। लेकिन उसकी यात्रा सिर्फ उस कच्ची बस्ती तक नहीं बल्कि उससे भी आगे रेगिस्तान की गहराइयों में जाती है। उपन्यास का अंत बहुत शक्तिशाली है। लल्ला अकेले तारों भरे आसमान के नीचे रेगिस्तान में बच्चे को जन्म दे रही है।
अकेले?
हाँ, अकेले। उसकी चीखें हवा में घुल रही हैं, जैसे कह रही हूं कि उसके लोगों का गीत खामोश नहीं होगा।
लल्ला का किरदार वाकई बहुत गहरा है। उसकी आज़ादी की जिद, उसकी अंदरूनी ताकत और उसकी रूहानी खूबसूरती जो जिस्मानी खूबसूरती से कई बढ़कर है, पढ़ी लिखी न होकर भी प्रकृति से उसका वो जुड़ाव कमाल का है।
और हरतानी, वो खामोश प्रेजेंस जिसका प्रकृति से गहरा नाता है, बिना शब्दों के लल्ला को समझने वाला, वो जैसे उस पवित्र बिगड़े न हुए अस्तित्व का प्रतीक है। और अगर बच्चा उसका है तो ये बच्चे को शहर के मैले असर से बचाकर रेगिस्तान के दो मासूम दिलों के रिश्ते की पैदाइश बनाता है। ये बहुत सुंदर विचार है।
उपन्यास में एक और रहस्यमयी किरदार का जिक्र है, एस सैर, रहस्य, जो लल्ला को दर्शन देता है। उसका क्या महत्व है?
एस सैर जैसे समय के पार से आती रेगिस्तानी ज्ञान की आवाज है। वो लल्ला को नूर से, उन सदियों पुरानी सच्चाइयों से जोड़ता है जो हालात बदलने पर भी नहीं बदलती। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक विरासत कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करती है। यहाँ लेखक रहस्यमय यथार्थवाद का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अलौकिक अनुभव कहानी की सच्चाई का हिस्सा है। कोई बाहरी जादू नहीं, ये लल्ला के अनुभव का हिस्सा है।
तो लल्ला की कहानी में भी वही बड़े विषय गूंजते हैं। परंपरा और आधुनिकता का टकराव साफ दिखता है, मार्से के खोखलेपन और रेगिस्तान की रूहानियत में।
हाँ, और आज़ादी की तलाश पहले समाज, शादी से, फिर आर्थिक तंगी से, पर यूरोप जाकर वो एक अलग तरह की आध्यात्मिक गुलामी में फंस जाती है। सच्ची आज़ादी तो अंदर की चीज़ है।
उपनिवेशवाद का असर भी दिखता है। गरीबी उसे परदेश जाने पर मजबूर करती है और वहाँ उसे अजनबी समझकर उसका शोषण होता है, उसकी अन्यथा का विदेशीकरण।
बिल्कुल। और नारी शक्ति, पितृ सत्ता के खिलाफ उसका विद्रोह और बच्चे को जन्म देना एक पवित्र क्रांतिकारी कदम बन जाता है। और हाँ, फिर से रेगिस्तान, आत्मा की पनाहगाह, घर, ताकत का स्रोत।
इन दोनों कहानियों को एक साथ बुनने का तरीका कितना असरदार है। नूर का वो महाकाव्यात्मक अतीत और लल्ला का अंतरंग वर्तमान एक दूसरे को जैसे आईना दिखाते हैं।
हाँ, एक लय बनाते हैं, जैसे समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही हों। नूर की कहानी लल्ला के संघर्ष को एक ऐतिहासिक गहराई देती है। हमें समझ आता है कि लल्ला सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही जिजीविषा की वारिस है।
नूर की आत्मा जैसे लल्ला में जिंदा है।
हाँ, ये दिखाती है कि रूहानी रिश्ता वक्त की सीमाओं को पार कर सकता है।
और ये सब मुमकिन होता है क्लोजियो की उस अनोखी भाषा और शैली से। उनका गद्य कैसा है, मतलब पाठक क्या महसूस करता है?
उनकी भाषा बहुत काव्यात्मक है, उसमें एक लय है और वो हमारी इंद्रियों को सीधे छूती है। लगता है जैसे हम खुद सूरज की तपिश, रेत की किरकिराहट, आसमान की विशालता महसूस कर रहे हों। वाक्य अक्सर लंबे, बहते हुए, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। खासकर रेगिस्तान के वर्णन या लल्ला के मन की बातों में ये जादू महसूस होता है। ये शैली पाठक को कहानी में पूरी तरह डुबो देती है।
और कहने का अंदाज, नजरिया किसका होता है?
वो किरदारों के बहुत करीब रहकर कहानी कहते हैं, जिसे हम निकट तृतीय पुरुष दृष्टिकोण कहते हैं। जैसे हम उनके मन के अंदर झांक रहे हों। इससे हमें नूर की प्यास या लल्ला का अकेलापन बहुत शिद्दत से महसूस होता है। एक तात्कालिकता और सहानुभूति बनती है।
उपन्यास में प्रतीक भी बहुत हैं, रोशनी, हवा, समंदर। शहर और रेगिस्तान का वो विरोधाभास तो है ही।
हाँ, रोशनी सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। हवा जैसे रेगिस्तान की आवाज है जो कहानियां, यादें, पुरखों की आत्माएं लाती है। समुंदर लल्ला के लिए पलायन भी है और किसी अनजान ताकत से जुड़ाव भी। शहर और रेगिस्तान का फर्क तो साफ है, एक बनावटी, दूसरा असली, एक अपवित्र, दूसरा पाक। पानी जीवन, शुद्धि का प्रतीक है और तारे मार्गदर्शन का,
खासकर उनके लिए जो प्रकृति के इशारे समझते हैं।
बिल्कुल।
तो अगर हम मुख्य विषयों को फिर से देखें, उन्हें समेटने की कोशिश करें, तो क्या निकल कर आता है? परंपरा बनाम आधुनिकता का वो द्वंद्व, आज़ादी के कई मायने, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सबसे बढ़कर रूहानी।
हाँ, और उपनिवेशवाद की क्रूरता और उसकी कभी न मिटने वाली विरासत, यादों और विरासत की ताकत, नारी शक्ति और जीवन का पवित्र सृजन, और सबसे ऊपर रेगिस्तान एक खाली जगह नहीं बल्कि रूहानी ज्ञान से भरा एक शिक्षक, एक उपस्थिति।
इसके साथ ही कुछ और परतें भी खुलती हैं, जैसे किसी जगह का रूहानी महत्व, कैसे जमीन हमारी चेतना को आकार देती है, अपनी संस्कृति से कटना और फिर अपनी असल पहचान खोजना।
पश्चिमी भौतिकवाद की आलोचना जो अंदर से खोखला कर देती है, पीढ़ियों के बीच ज्ञान का सफर अम्मा से लल्ला तक और कहीं ना कहीं नूर से लल्ला तक भी,
घर से दूर जाना और फिर वापस लौटना
जैसे आत्मा के विकास के पड़ाव हों।
हाँ,
और आखिर में रूहानी तौर पर जागकर इतिहास की सीमाओं को लांघ जाना।
डेजर्ट पढ़ना वाकई एक गहरा अनुभव है, किरदारों से एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। नूर की वो भूख, लल्ला का वो अकेलापन, ये सब पाठक महसूस करता है।
हाँ, एक उदासी है इसमें, खोई हुई दुनियाओं का, कुचली गई संस्कृतियों का दर्द, पर यह निराशाजनक उपन्यास नहीं है। लल्ला की वापसी और बच्चे का जन्म जिंदगी और निरंतरता का एक शक्तिशाली संदेश है।
उम्मीद की किरण हमेशा रहती है,
और ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है। पैसा, कामयाबी, जिसे हम सभ्यता कहते हैं, क्या वो वाकई सच्ची दौलत है, या असली खजाना रेगिस्तान की खामोशी और रोशनी में छिपा है? बिल्कुल, इसे पढ़कर एक प्यास सी जगती है अपनी असलियत से जुड़ने की, प्रकृति से गहरा रिश्ता बनाने की। ये एहसास कि रेगिस्तान खाली नहीं बल्कि इशारों से भरा है, जिन्हें बस समझना सीखना है। लल्ला की वो बाहरी छवि जो एक वस्तु बन के रह गई थी, और उसकी अंदर की आत्मा के बीच का फासला बहुत कुछ कह जाता है। और ये ख्याल कि हमारी रूह की एक ऐसी जगह है जिसे कोई फौज नहीं जीत सकती, ये बात दिल में उतर जाती है। जैसे कहीं पढ़ा था, असली यात्रा जगह बदलना नहीं बल्कि देखने का नजरिया बदलना है।
ये उपन्यास हमें सिखाता है कि इंसान की रूह मुश्किलों और भुला दिए जाने के खतरों के सामने भी कितनी मजबूत और लचीली हो सकती है,
और इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हमें अपनी जड़ों, अपनी विरासत और इस धरती से हमारे रिश्ते की अहमियत याद दिलाती है, खासकर आज की इस भागती दौड़ती भौतिकवादी दुनिया में।
मैंडेटरी क्लोजिंग लाइन, मैंडेटरी क्लोजिंग लाइन।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।